नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में नाकाम पाकिस्तान अपने संविधान में संशोधन के लिए मजबूर हुआ। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 62 लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। समूचे विश्व में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में भारत की पीवी सिंधु पराजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री मोदी आज शाम सोमनाथ पहुंचेंगे और सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्रोच्चारण में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में ड्रोन शो का अवलोकन भी करेंगे। कल प्रधानमंत्री शौर्य यात्रा में सम्मिलित होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये पर्व भारत के शाश्वत भावना का प्रतीक है।
प्रभास पाटन में आयोजित 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की उस अजेय भावना का प्रतीक है जो सोमनाथ मंदिर पर हुए वर्ष 1026 के आक्रमण के बाद भी कभी नहीं टूटी। आर्थिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री राजकोट में दूसरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पश्चिमी गुजरात क्षेत्र को समर्पित यह सम्मेलन मुख्य रूप से सिरेमिक इंजीनियरिंग और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री गांधीनगर में अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के अंतिम खंड का उद्घाटन करेंगे जो सेक्टर 10A को महात्मा मंदिर से जोड़ता है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने सैन्य और संवैधानिक ढांचे में तेजी से बदलाव कर संघर्ष के दौरान की अपनी गंभीर कमियों को स्वीकार कर लिया है। पुणे में कल पुणे लोक नीति समारोह में उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अप्रैल के आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को संवैधानिक संशोधन करने के लिए मजबूर किया। जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में अभी केवल विराम आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन कर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद को समाप्त कर उसकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के पद का सृजन किया है। इससे अधिक शक्तियां एक ही व्यक्ति में सिमट कर रह गई हैं। ईरान में राजधानी तेहरान सहित देश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वर्ष 2022 के बाद यह पहला मौका है जब ईरान को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट।
ये प्रदर्शन ईरान में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मुद्रा अवमूल्यन के विरोध में हो रहे हैं। अमरीकी मानवाधिकार संस्था ओवरसीज ईरानियन राइट्स ग्रुप के अनुसार इन प्रदर्शनों में 62 लोग मारे गए हैं। सरकार ने 2300 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। इंटरनेट सेवा लगभग ठप है और डिजिटल सेंसरशिप सख्ती से लागू की गई है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन पिछले वर्ष 28 दिसंबर को शुरू हुए थे। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी ने कल टेलीविजन संदेश में देश में जारी उपद्रव को आतंक की कार्रवाई बताया और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान गंभीर संकट में है और अमेरिका इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी भवनों, अस्पतालों और मस्जिदों को भी निशाना बनाया है और सरकारी प्रसारण कार्यालयों सहित कई भवनों में आग लगा दी है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो रूस और चीन इसमें दखल देंगे और अमेरिका ये नहीं चाहता। श्री ट्रंप ने यह भी कहा कि 500 साल पहले ग्रीनलैंड में जहाज से पहुंचने का अर्थ ये नहीं है कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। एक रिपोर्ट।
ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है जहां दुर्लभ खनिजों, यूरेनियम और लोहे के विशाल भंडार हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश फिर से शुरू कर दी है। अमेरिका कई दशकों से कहता रहा है कि ग्रीनलैंड उसके लिए विशेष महत्व रखता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्ष 2019 में अपने पहले कार्यकाल में भी इस द्वीप को खरीदने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि डेनमार्क शुरू से कहता रहा है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल और गैस अधिकारियों के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में पेट्रोलियम के विशाल भंडार को पूरी क्षमता के अनुसार उपयोग लायक बनाने के लिए $100 अरब का निवेश करने का इच्छुक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब वेनेजुएला के निवेश और श्रमिक सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वे अब सीधे अमरीकी सरकार के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी कंपनियों ने अमरीकी तकनीक और धन का उपयोग कर वेनेजुएला के तेल उद्योग का निर्माण किया था, जिससे बाद में अमरीका को वंचित कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व अमरीकी राष्ट्रपतियों ने उन अमरीकी संसाधनों को वापस पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। श्री ट्रंप का मानना है कि अमरीकी तेल कंपनियों की $100 अरब की निवेश योजना से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। अमरीका ने हाल के एक सैन्य अभियान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके आवास से पकड़ लिया था। इस बीच अमरीका के न्यूयॉर्क शहर में एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले 5 राज्यों में बच्चों की देखभाल और सामाजिक सेवाओं के लिए निर्धारित लगभग $10 अरब की रकम को फ्रीज करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। दुनिया भर में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य कूटनीति, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2006 में आज ही के दिन नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय और विदेशों में भारतीय मिशन भी प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाते हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भाषा संस्कृति को जीवित रखती है और इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से देश की संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रसार करना है। एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय प्रवासी भारतीयों को हिंदी से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। 53वां विश्व पुस्तक मेला आज से नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। मेले में 35 देशों के 1000 से अधिक प्रकाशकों की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। मेले का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बड़ी संख्या में प्रकाशक इसमें भाग लेंगे। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु की हार के साथ प्रतियोगिता में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। सिंधु चीन की वांग झीई से 16-21, 15-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराकर सिंधु सेमीफाइनल में पहुंची थी। प्रतियोगिता में पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद फिक्री की जोड़ी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 154 रन बनाए। महिला प्रीमियर लीग का ये चौथा संस्करण 2 जगहों पर खेला जा रहा है। इनमें नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम और वडोदरा का VCA स्टेडियम शामिल है। नवी मुंबई के बाद अन्य 11 मैच वडोदरा में खेले जाएंगे। इनमें प्ले ऑफ मैच भी शामिल हैं। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उत्तर कोरिया के अनुसार 4 जनवरी को दक्षिण कोरिया का एक ड्रोन उत्तर कोरिया के हवाई क्षेत्र में 8 किलोमीटर भीतर प्रवेश कर गया था, जो उत्तर कोरिया की संप्रभुता का उल्लंघन है। उत्तर कोरिया ने इस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। उत्तर कोरिया के अनुसार इस ड्रोन में निगरानी कैमरे लगे थे। श्रीलंका के मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बने गहरे दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ने की संभावना है। आज तड़के 4 बजे त्रिंकोमाली से 100 किलोमीटर उत्तर उत्तर पूर्व में बना दबाव का क्षेत्र दोपहर के आसपास त्रिंकोमाली और जाफना तट को पार कर जाने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में नाकाम पाकिस्तान अपने संविधान में संशोधन के लिए मजबूर हुआ। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 62 लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। और समूचे विश्व में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में भारत की PV सिंधु पराजित। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।